हमारे सभी सुनने वाले दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ कामायनी और मेरे साथ है मेरे दोस्त
कबीर।
और दोस्तों एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके अपने प्रोग्राम हमसे है देश की 14वीं कड़ी।
14वीं कड़ी?
हाँ,
मतलब लोकतंत्र की बात करते करते हम बहुत आगे आगे नहीं।
हाँ, पर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है कबीर जिस पर चर्चा होनी बाकी है। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स यानी मौलिक मानवाधिकारों की। बस फर्क इतना सा है कि संविधान में ये सभी अधिकार निरंकुश नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। अधिकारों के साथ साथ तुम जानते हो जिम्मेदारी भी तो जुड़ जाती है।
बिल्कुल, और इनका हनन होने पर बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति न्यायपालिका का द्वार खटखटा सकता है, मतलब इनके लिए लड़ सकता है। अब देखो ना, बुलबुल बाग में भी तो यही हुआ।
तो चलो हमारे अगले सेगमेंट बेताल 26 में बेताल से सुनते हैं कि बुलबुल बाग में क्या हुआ।
बेताल 26, बेताल 26, बेताल 26 रे।
बेताल, बेताल, अरे बेताल कहाँ हो तुम?
विक्रम जूनियर, तुमसे एक सवाल पूछूं?
अच्छा जी, आज कहानी बताने से पहले ही सवाल। पूछो पूछो।
मैं पेड़ से कूदकर सीधे तुम्हारी पीठ पर बैठता हूँ तो तुम मुझे असहाय समझोगे क्या?
अरे क्यों भला।
तो चलो बुलबुल बाग की कहानी सुनकर फिर बताना। वहाँ भी एक बार ये सवाल उठा था। एक दिन बुलबुल बाग में दो सारसों की लड़ाई हो रही थी। तो मगरूर सारस और तोताराम सारस लड़ रहे थे।
तोताराम, अरे ओ तोताराम, ये तालाब सारसों का है, समझा? सारसों के नाम पर कलंका नहीं।
क्या बोला?
तुम अपनी कोई टूटी चोंच वाली मंडली ढूंढो और उन्हीं के साथ किसी दूसरे तालाब पर जाया करो।
अरे क्यों करूं मैं ऐसा? तुमसे तो नहीं बोल रहा कि तुम मुझे पानी पिलाओ। तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते?
लगता है चोंच टूटने से जबान ज्यादा चलने लगी है तेरी।
हाँ, फिर तुम्हारी भी तोड़ देता हूँ, तुम्हारी भी जबान पे ज्यादा चलेगी।
मेधावी मेंढक बहुत देर तक उन्हें सुनता रहा, पर दोनों की ऐसी भिड़ंत देखकर बीच बचाव करने पहुंचा।
अरे अरे अरे, रुको रुको, तुम दोनों बड़ी ही अजीब बात पर लड़ रहे हो, ये भी कोई मुद्दा है भला?
मेंढक तुम दूर ही रहो। कुमक्कड़ गिरनी ने जिम्मेदारियां क्या दे दी, तुम तो हर बात पर अपनी टांग अड़ाने लगे। और मुद्दा क्यों नहीं है? अरे ये बिना चोंच वाला सारस देखा है कभी तुमने?
तो मुझे देख लो तुम मगरूर, और मुझे नहीं देख सकते तो फिर तुम्हारी सोच भी तोड़ देता हूँ। पानी पीते पीते फिर रोज देखा करोगे।
टूटाराम, टूटाराम, तुम हमारी पूरी प्रजाति के लिए कलंक हो। अरे चोंच नहीं तो कुछ भी नहीं, कहीं और जाकर अपना टूटी चोंच प्रदेश बनाओ। जाओ,
बस बस अब लड़ना बंद करो। देखो मगरूर, टूटाराम का बुलबुल बाग में उतना ही हक है जितना कि मेरा और तुम्हारा। चोंच ना होने से क्या फर्क पड़ता है, हैं?
वाह रे वाह लोकतंत्र, सारस को क्या करना चाहिए और क्या नहीं अब हमें ये मेंढक बताएंगे। हाँ? हम शेख चंद के पास जाएंगे।
अच्छा चलो
चलो चलो। तीनों शेख चंद सारस के पास गए। मेधावी मेंढक ने सारा मामला शेख चंद को समझाते हुए उससे उसकी राय मांगी। शेख चंद सारस पूरा मामला सुनकर जोरों से हंसने लगा।
वैसे मेंढक, तुमने अच्छा किया जो तुम इस मुद्दे को मेरे सामने लाए, वरना हमने भी कहाँ देखा था कभी कोई बिना चोंच वाला सारस। ये तो दुर्लभ प्रजाति है।
और तुम कमाल करते हो शेख चंद, ये भी तुम्हारी तरह ही एक सारस है और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसके लिए लड़ो।
अरे अरे मेंढक, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने कभी ऐसे सारस देखे ही नहीं ना।
ट्र, ट्र, खैर घुमक्कड़ घिरनी होती तो जरूर कोई हल निकालती है। वो बुलबुल बाग के सर्वोपरि दस्तावेज कागज कायदा में दिए गए नियमों का पालन करती, और कागज कायदा में ये साफ लिखा है कि सभी जानवर और पक्षी बराबर हैं। हर रंग के, हर नस्ल के, लोमड़ी हो या हिरन, तोता हो या कौआ, गिद्ध हो या सारस, और सारस की चोंच हो या ना हो, सब बराबर हैं।
ये चोंच वाली बात नहीं लिखी है कागज़े कायदा में।
अब हर एक बात लिखी भी नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें कागज़े कायदा के मूल सिद्धांतों और उसकी पूर्ण विचारधारा में झलकती है, हमें उनका सही निष्कर्ष निकालना चाहिए। हैं?
बात तो तुम ठीक कहते हो, और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि चोंच टूटने पर टूटाराम को तो बड़ी दिक्कत होती होगी, खासकर मछलियाँ पकड़ने में।
हाँ शेख चंद, होती तो है, कई कई दिनों तक भूखे भी रहना पड़ता है।
फिर तो बराबरी का मौका तुम्हें नहीं मिल पाता होगा।
नहीं,
बुलबुल बाग एक जंगल जरूर है, पर ये जंगल राज नहीं है। बुलबुल बाग के पास भंडार है, जहाँ हर जानवर और पक्षी के लिए संसाधन उपलब्ध है। पर किसी कारण अगर कोई जानवर या पक्षी उसका फायदा नहीं उठा पा रहा है, तो बुलबुल बाग के लोकतंत्र की जिम्मेदारी है कि उस जानवर या पक्षी की मदद की जाए। तो बुलबुल बाग तुम्हारी इस मुश्किल में तुम्हारे साथ रहेगा।
सच?
हाँ टूटाराम, तालाब में मछलियाँ बढ़ा दी जाएंगी, बाकी कुछ सारस भी तुम्हारी मदद किया करेंगे मछली पकड़ने में।
अच्छा,
करे तो कैसा रहे
तो? अरे अरे शेखचंद सरकार, आप ये क्या कर रहे हैं?
मुझे सरकार कहकर चापलूसी मत करो मगरूर, तुम ही टूटाराम की मदद करोगे अब से।
शुक्रिया शुक्रिया शेखचंद, आज तुमने अपनी बातों से मेरे मन में जगह बना दी। मुझे नहीं मालूम था कि शेख ही तो बस सिर्फ तुम्हारे नाम में है, किंतु काम में तो आत्मीयता है।
बेताल छपी सी रे।
अच्छा कम्मो, टूटाराम जैसी कितनी ही कहानियां इतिहास में होंगी ना। आज हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल,
पर पहले के समाज में ये मौलिक अधिकार लोगों के पास थे ही नहीं।
बिल्कुल ठीक कहा तुमने कबीर, मौलिक मानवाधिकारों का जन्म कैसे हुआ इसकी कहानी बहुत ही रोमांचक है। सुनना चाहोगे तुम
हमारे अगले सेगमेंट देश विदेश में?
हाँ बिल्कुल ठीक समझे।
ह्यूमन राइट्स यानी वो अधिकार जो स्वाभाविक रूप से एक इंसान होने के नाते मुझे और आपको मिलते हैं, मगर इन मानव अधिकारों की समझ कैसे बनी? 539 ईसा पूर्व पर्शिया के पहले राजा साइप्रस द ग्रेट ने जब बेबीलोन में अपना वर्चस्व जमाया, उसने सबसे पहले बंदी बनाए गए दासों को आजाद किया और ये घोषणा की कि सभी लोगों को धर्म चुनने की आजादी है और सभी लोग बराबर हैं। ये सभी घोषणाएं पकी मिट्टी से बने एक सिलेंडर में दर्ज की गईं, जिसे आज हम कहते हैं साइरस सिलेंडर। इसी को ह्यूमन राइट्स का पहला घोषणा पत्र माना जाता है। बेबीलोन से ह्यूमन राइट्स का यह ख्याल भारत, ग्रीस और रोम तक पहुंचा। रोम में ह्यूमन राइट्स को नेचुरल लॉ की तरह देखा जाने लगा। इतिहास के कुछ दस्तावेज जो आज के मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के घोषणा पत्र की सीढ़ियां बने, वो हैं 1215 में इंग्लैंड में आया मैग्ना कार्टा और उसके कई साल बाद यानी 1628 का द पेटिशन ऑफ राइट, 1787 में आया अमेरिका का संविधान जिसको लिखने का श्रेय जाता है थॉमस जेफरसन को, इसके बाद 1789 में आया फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन और 1791 में आया US बिल ऑफ राइट्स। ये सभी मानवाधिकार की बात करते हैं, पर बावजूद इन सब के दुनिया को दो विश्व युद्ध भी देखने पड़े। इतिहास के अध्यायों में जितना मानवाधिकारों का हनन देखने को मिलता है उतना शायद ही कहीं और हो। इसी कारण मानवाधिकारों को एक नए सार्वलौकिक यानी यूनिवर्सल ढंग से देखने की जरूरत महसूस हुई। इसी कारण 1945 में संयुक्त राष्ट्र के गठन के बाद 1948 में जन्म हुआ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का। अच्छा अब आपसे पूछते हैं कि मानव अधिकारों के बारे में आप क्या सोचते हैं
हमारे अगले सेगमेंट एक था नागरिक में।
राइट्स टू एक्सप्रेशन है कि आप अपना जो आप बोलना चाहते हो करना चाहते हो, राइट टू लिव मतलब ये है कि आपको आज़ादी है अगर आप कुछ करना चाहते हो और आपको जीने की आज़ादी है। राइट टू इक्वालिटी है कि सब लोग बराबर हैं और ये सबसे ज़रूरी मुझे लगता भी है कि जिससे ज़्यादातर समस्या इसी वजह से कि राइट टू इक्वालिटी लोगों में एक दूसरे को इक्वल नहीं समझते, छोटे बड़े का जो भाव है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत।
ह्यूमन राइट्स हमारे जो संविधान में है मेरे ख्याल से 6 राइट्स हैं, एक तो राइट टू हमारा इक्वालिटी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, और राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो ये ऐसे हमारे 5-6 बेसिक राइट है जो हर किसी नागरिक को संविधान प्रोवाइड करता है। हमारा
राइट टू वोट तो ही सबको है, वो हमारे ख्याल से भी है, और अधिकार को अगर दूसरे तरीके से देखें तो कुछ फैसिलिटीज़, रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक वो चीज़ें होनी चाहिए। जो हम जैसे कई बार जाते हैं, हम बाहर घूमने जाते हैं, अपनी मेट्रो सिटीज़ से अलावा हम जाते हैं पहाड़ों पर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज़ उनके पास बेसिक चीज़ें भी अवेलेबल नहीं होती कई कई बार, तो वो चीज़ें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए।
एक तो जैसे मैंने कहा लॉ, तो लॉ का एक्सेस सबको मिलना चाहिए और जस्टिस का एक्सेस सबको मिलना चाहिए, पूरा एक प्रक्रिया का साधन सबको मिलना चाहिए कि हमें कोई जस्टिस अगर चाहिए तो उसके लिए क्या तरीका है जस्टिस तक पहुंचने का, वो क्लियर रास्ता दिखना चाहिए।
ये सबको हर वयस्क को वोट देने का है, सबको राइट टू लाइफ है, राइट टू स्पीच है, ये किसी भी उम्र में भी नहीं है, ये हर उम्र के हर तरह के लोगों के लिए है। तो बहुत सारे प्रोविज़न हैं यहाँ पर, तो दर्जनों प्रोविज़न हैं जो सब पे लागू होते हैं, सार्वभौमिक हैं।
जो सारे राइट्स लिखे हैं वो सभी हमें प्राप्त हैं, वो सब हम एक्सरसाइज करते हैं, मतलब सब हमारे को ही प्राप्त हैं। राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, सेक्युलर होना, ये सब हमारे राइट्स हैं।
स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये सारे हमारे मौलिक अधिकार हैं। जीवन जीने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की आज़ादी, ये सारे हमारे हमें संविधान द्वारा प्राप्त है।
अच्छा कमो, क्या तुम्हें पता है कि कुछ लोगों को आज भी एक बहुत ही खूबसूरत अधिकार से वंचित रखा जाता है?
किस अधिकार की बात कर रहे हो तुम?
अरे राइट टू लव, मतलब प्यार करने का अधिकार।
हाँ कबीर, ये तुमने ठीक कहा, समाज जिन्हें कमजोर समझता है ना, उनसे ये हक भी छीनने की कोशिश करता है। जैसे महिलाओं को, विकलांगों को, इन सभी को प्यार करने या प्यार का इजहार करने पर समाज तिरस्कार की नजर से देखता है।
हाँ वो तो है, पर कुछ लोग हैं जो लड़ते हैं और लड़ रहे हैं।
दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पांव पिछाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग।
अब वक्त है श्रोताओं से सवाल का। तो आज का सवाल है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कितने मानवाधिकार सूचीबद्ध हैं?
तो आप हमें अपने जवाब भेजिए और सही जवाब देने वालों को मिलेगा एक सरप्राइज। और ऑप्शन सुनने के लिए कॉल कीजिए 07966210428 पर, ये कॉल निशुल्क है।
और हाँ, हमें आप पत्र, ईमेल और फोन के जरिए जरूर बताइएगा, अपनी कविताएं और गाने भी जरूर भेजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है freedom@idiosyncmedia.org। SMS और फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9958747972। अब हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, नमस्कार।